नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। ईरान और अमेरिका संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध में। अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया है।
पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
संक्षिप्त रिपोर्ट को संबोधित करते हुए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर और चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम और अस्थिरता को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बावजूद संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर गतिरोध में फंसे हुए हैं। हाल के दिनों में गोलीबारी, जहाजों और खाड़ी देशों पर हमले और इसराइल तथा लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला के बीच नए सिरे से झड़पें हुई हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर इस महीने की 13 से 15 तारीख तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये घोषणा की। लगभग 9 वर्ष में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली चीन की यात्रा होगी। ये यात्रा ईरान से व्यापार और जारी संघर्ष को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के बीच हो रही है। अफगानिस्तान में बाढ़ से नंगरहार प्रांत में लगभग 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी गई है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। IOM के अनुसार बाढ़ में कई लोगों के घर, खेती की जमीन और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। संगठन ने कहा कि लगमान और कुनार प्रांतों में भी राहत कार्य जारी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हालांकि आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध जारी। अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।